दानियल की पुस्तक संख्या 69 पीढ़ीगत चक्र का अनावरण। एडवेंटिज्म के चार घोर पाप।
ईश्वर कभी नहीं बदलते और इसलिए एडवेंटिज्म का अपनी चौथी पीढ़ी में न्याय होता है।
और इसने उस व्यक्ति को कुकारा जो पटसन के वस्त्र पहने हुए था और जिसकी कमर से लेखक की दवात लटकी थी, और प्रभु ने उससे कहा, नगर के बीच में यरूशलेम के बीच से होकर निकल और उन पुरुषों के माथों पर एक चिन्ह लगा दे जो वहां के बीच में किए जाने वाले सब घृणित कार्यों के कारण आहें भरते और रोते हैं। और दूसरों से उसने मेरे सुनते कहा, तुम उसके पीछे पीछे नगर में होकर जाओ और प्रहार करो, न किसी को बख्शना न दया करना। बूढ़ों और जवानों, कुमारियों, छोटे बच्चों और स्त्रियों, सबको सर्वथा मार डालो। पर जिस किसी पर वो चिन्ह हो उसके निकट ना जाना और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करना। तब उन्होंने उन वृद्ध पुरुषों से आरंभ किया जो घर के सामने थे।
यीशु जल्द ही स्वर्गीय पवित्र स्थान के दया सिंहासन को छोड़कर प्रतिशूद के वस्त्र पहनने वाले हैं और परमेश्वर द्वारा दी गई ज्योति का प्रत्युत्तर न देने वालों पर अपने न्यायों द्वारा अपना क्रोध उंडेलेंगे। क्योंकि दुष्ट कर्म का दंड शीघ्र नहीं दिया जाता, इस कारण मनुष्यों के पुत्रों का मन बुराई करने के लिए उनके भीतर दृढ़ हो जाता है। प्रभु ने उनके प्रति जो धैर्य और दीर्घ सहनशीलता दिखाई है उससे कोमल होने के बजाय, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते और सत्य से प्रेम नहीं करते, वे अपने दुष्ट मार्ग में अपने हृदयों को और दृढ़ कर लेते हैं। परंतु परमेश्वर की सहनशीलता की भी सीमाएं हैं और बहुत से लोग इन सीमाओं को लांघ रहे हैं। वे अनुग्रह की सीमाओं से आगे निकल गए हैं, इसलिए परमेश्वर को हस्तक्षेप कर अपने थोए सम्मान की रक्षा करनी होगी।
अमोरियों के विषय में प्रभु ने कहा, चौथी पीढ़ी में वे फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि अमोरियों का अधर्म अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है। यद्यपि ये जाति अपनी मूर्ति पूजा और भ्रष्टता के कारण विशेष रूप से जानी जाती थी, तो भी उसने अपने अधर्म का प्याला अभी तक नहीं भर दिया था और परमेश्वर उसके सर्वनाश का आदेश नहीं देने वाले थे। लोगों को दिव्यता का प्रगटीकरण स्पष्ट रीति से देखना था, ताकि उनके पास कोई बहाना न रह जाए। दयालु सृष्टिकर्ता उनके अधर्म को चौथी पीढ़ी तक सहने को तैयार थे। तब यदि भलाई की ओर कोई परिवर्तन दिखाई न दे तो उसके दंड उन पर आ पड़ने वाले थे। अचूकता के साथ अनंत परमेश्वर अब भी सभी राष्ट्रों का हिसाब रखता है। जब तक वो पश्चाताप के लिए बुलाहटों के साथ अपनी दया प्रदान करता रहता है, तब तक ये हिसाब खुला रहेगा। परंतु जब संख्याएं उस सीमा तक पहुंच जाती हैं जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है, उसके क्रोध की कार्यवाही आरंभ हो जाती है। हिसाब बंद कर दिया जाता है, देवी धैर्य समाप्त हो जाता है। अब उनके पक्ष में दया की कोई विनती नहीं रहती।
भविष्यद्वक्ता ने युगों पर दृष्टि डालते हुए अपने दर्शन में इस समय को देखा था। इस युग के राष्ट्र अभूतपूर्व दयाओं के प्राप्तकर्ता रहे हैं। स्वर्ग की सर्वोत्तम आशीषें उन्हें दी गई हैं, परंतु उनके विरुद्ध बढ़ा हुआ अहंकार, लोभ, मूर्ति पूजा, परमेश्वर के प्रति तिरस्कार और घोर कृतघ्नता लिखी हुई हैं। वे तेजी से परमेश्वर के साथ अपना लेखा बंद कर रहे हैं।
पर जो मुझे कांपने पर विवश करता है वो ये तथ्य है कि जिन्हें सबसे बड़े प्रकाश और विशेषाधिकार मिले थे, वे प्रचलित अधर्म से दूषित हो गए हैं। अपने चारों ओर के अधर्मियों से प्रभावित होकर अनक लोग, यहाँ तक कि जो सत्य का अंगीकार करते हैं, ठंडे पड़ गए हैं और बुराई की प्रबल धारा से बहा दिए गए हैं। सच्ची भक्ति और पवित्रता का जो व्यापक उपहास किया जा रहा है, वो उन लोगों को जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रूप से नहीं जुड़े हैं, उसकी व्यवस्था के प्रति अपनी श्रद्धा खो देने की ओर ले जाता है। यदि वे प्रकाश का अनुसरण कर रहे होते और हृदय से सत्य का पालन कर रहे होते, तो जब इसे इस प्रकार तुच्छ समझकर अलग रख दिया जाता है, तब ये पवित्र व्यवस्था उन्हें और भी अधिक मूल्यवान प्रतीत होती। जैसे जैसे परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति अनादर अधिक प्रकट होता जाता है, उसके पालन करने वालों और संसार के बीच की विभाजन रेखा उतनी ही स्पष्ट होती जाती है। जिस प्रकार एक वर्ग में दैवी आज्ञाओं के प्रति तिरस्कार बढ़ता है, उसी प्रकार दूसरे वर्ग में दैवी आज्ञाओं के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है।
संकट तीव्र गति से निकट आ रहा है। तेजी से बढ़ते आंकड़े ये दर्शाते हैं कि परमेश्वर के न्याय के आगमन का समय लगभग आ पहुंचा है। यद्यपि वो दंड देने में अनिच्छुक है, तथापि
वो दंड देगा और वो भी शीघ्र। जो प्रकाश में चलते हैं वे निकट आती वहीपथ के चिन्ह देखेंगे, परंतु उन्हें विनाश की शांत उदासीन प्रतीक्षा में बैठ नहीं जाना चाहिए। इस विश्वास से अपने आप को दिलासा देते हुए कि न्याय के दिन परमेश्वर अपने लोगों को शरण देगा, कदापि नहीं। उन्हें ये समझना चाहिए कि दूसरों को बचाने के लिए परिश्रम पूर्वक कार्य करना उनका कर्तव्य है और सहायता के लिए दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। धर्मी मनुष्य की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर दिखाती है। धर्मपरायणता का खमीर अपनी शक्ति पूरी तरह नहीं खोका है। जब कलीसिया पर संकट और निराशा अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब प्रकाश में खड़े वे थोड़े लोग देश में किए जा रहे घरों मिनट कर्मों के कारण आहें भरेंगे और रोएंगे, परंतु विशेष रूप से उनकी प्रार्थनाएं कलीसिया के लिए उठेंगी, क्योंकि उसके सदस्य संसार की रीति पर चल रहे हैं। इन थोड़े से विश्वास योग्य लोगों की गंभीर प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जब प्रभु प्रतिशोधकर्ता के रूप में प्रकट होंगे, तब वो उन सब के रक्षक के रूप में भी आएंगे जिन्होंने विश्वास को उसकी पवित्रता में अक्षुण रखा है और अपने को संसार से निष्कलंक रखा है। इसी समय परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है कि वो अपने चुने हुओं का बदला लेगा जो रात दिन उसकी ओर पुकारते हैं, यद्यपि वो उनके साथ दीर्घकाल तक धैर्य धरता है। आज्ञा ये है, नगर के बीच से, यरूशलेम के बीच से होकर निकलो और उन मनुष्यों के माथों पर एक चिन्ह लगा दो जो वहां के बीच में किए जाने वाले सब घृणास्पद कामों के कारण आहें भरते और रोते हैं। ये आहें भरने और रोने वाले लोग जीवन के वचन लोगों के सामने रखते आए थे। उन्होंने ताड़ना दी थी, परामर्श दिया था और विनती की थी। जो लोग परमेश्वर का अपमान कर रहे थे, उनमें से कुछ ने पश्चाताप किया और उसके सामने अपने हृदयों को दीन किया। परंतु प्रभु की महिमा इज़राइल से विदा हो गई थी। यद्यपि बहुतों ने अब भी धर्म के बाहरी रूपों को बनाए रखा, उसकी सामर्थ्य और उपस्थिति नहीं पाई जाती थी। टेस्टिमोनीज, खंड 5, 210-210।
उस अंश में सिस्टर वाइट जिस परमेश्वर के न्याय के चित्रण की ओर इंगित कर रही हैं, वो यरूशलेम नगर पर लाया गया न्याय है जो अंतिम दिनों में सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया है। न्याय रविवार के कानून पर अंतिम रूप से तय होता है, क्योंकि वही परमेश्वर की मोहर और पशु की छाप लगाई जाती है। हेहिजकेल के 8वें अध्याय में 4 क्रमशः बढ़ती हुई घृणित बातों की पहचान की गई है। पहली आयत इस बात पर बल देती है कि ये दर्शन अनुग्रह का समय समाप्त होने से ठीक पहले समझा जाना है, क्योंकि वो छठे वर्ष के छठे महीने के 5वें दिन का उल्लेख करती है। ये हेजकेल को उस ऐतिहासिक संदर्भ बिंदु को शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी। वो सरलता से ये लिख सकता था, और ऐसा हुआ कि जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के प्राचीन मेरे सामने बैठे थे, तब वहां प्रभु परमेश्वर का हाथ मुझ पर पड़ा। ये तथ्य कि उसने 666 से ठीक पहले वाले दिन का संदर्भ शामिल किया, भविष्यवाणी के विद्यार्थियों के लिए एक भविष्य सूचक संकेत है। जिन्होंने पशु के नाम की संख्या पर विजय पाई है, वे जानते हैं कि 666 यीशु मसीह के प्रकाशन का एक तत्व है जो अनुग्रह का समय समाप्त होने से ठीक पहले खोला जाता है। वे ये इसलिए जानते हैं क्योंकि वे परमेश्वर की प्रजा हैं, जो पतरस के अनुसार बीते समयों में परमेश्वर की प्रजा न थे। पहला पतरस अध्याय 2 में वे लोग जो अब परमेश्वर की प्रजा हैं, यह चख चुके हैं कि प्रभु कृपालु है। वे वही हैं जिन्होंने भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर के वचन को खा लिया है, उनके विपरीत जिन्होंने परमेश्वर के वचन को खाने से इनकार कर दिया। सभी भविष्यद्वक्ता अंतिम दिनों के विषय में बोलते हैं, और यूहन्ना अध्याय 6 में यीशु ने यह संदेश दिया कि उसके चेलों को उसका मांस खाना और उसका लहू पीना चाहिए। उसी अध्याय के पद 66 में जिन चेलों ने उसका मांस खाने और उसका लहू पीने से इनकार किया, उन्होंने ऐसा किया।
तब से उसके बहुत से चेले पीछे हट गए और उसके साथ फिर न चले। यूहन्ना 6:66।
जो बुद्धिमान अंतिम दिनों में मसीह का मांस खाते और उनका रक्त पीते हैं, वे समझते हैं कि मसीह पालमोनी के रूप में अद्भुत गणक है, और जब उनका हस्ताक्षर प्रस्तुत किया जाता है तो वो उसे पहचान लेते हैं। 6765 की संख्या यहेजकेल अध्याय 8 की आरंभिक आयत में मौजूद है, और जो कोई देखना चाहे उसके लिए वो कम से कम दो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी से संबंधित बिंदुओं की पहचान करती है। पहला ये कि इस संदेश को रविवार के कानून से पहले की एक समयावधि को आवृत करने वाला समझा जाना चाहिए। दूसरा ये कि 6765 की संख्या प्रकाशित वाक्य की केवल दो आयतों में से एक में है जिनके बारे में यह स्पष्ट किया गया है कि ज्ञानी अंतिम दिनों में समझेंगे।
यहाँ बुद्धि है, जिसके पास समझ हो वो पशु की संख्या गिने, क्योंकि वो मनुष्य की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। प्रकाशित वाक्य 13:18।
जो बुद्धिमान अंतिम दिनों में ज्ञान की वृद्धि को समझते हैं, जब यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य खोला जाता है, वे जानेंगे कि 666 एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी संबंधी प्रतीक है, क्योंकि वे उस संख्या पर विजय प्राप्त कर चुके होंगे। इसलिए यहेजकेल अध्याय 8 में एक क्रमशः बढ़ती हुई बगावत प्रस्तुत करता है, जिसका प्रतिनिधित्व 4 क्रमशः बढ़ती हुई गृणित बातों द्वारा किया गया है। अंतिम गृणितता मूर्खों को सूर्य के आगे झुकने वालों के रूप में पहचानती है, और इस प्रकार अंतिम दिनों में यरूशलेम एडवेंटिज्म के न्याय को चिह्नित करती है। वो न्याय चौथी पीढ़ी में होता है। वे 4 गृणित बातें लाओदीकियाई एडवेंटिज्म की 4 पीढ़ियों के प्रतीक है। पहली पीढ़ी 1863 में उस विद्रोह के साथ शुरू हुई जो मूसा की 7 बार की शपथ के विरुद्ध था। 25 वर्ष बाद 1888 का विद्रोह प्रकट हुआ। 31 वर्ष बाद 1919 का विद्रोह हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व W.W. प्रेस्कॉट की पुस्तक मसीह का सिद्धांत ने किया। उसके 38 वर्ष बाद 1957 में सिद्धांत पर प्रश्न नामक पुस्तक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया विद्रोह हुआ। अब हम ये दिखाना शुरू करेंगे कि ये 4 मील के पत्थर यहेजकेल अध्याय 8 की 4 घृणित बातों के साथ क्यों मेल खाते हैं। 1327 में लाओदीकियाई सलिद एडवेंटिज्म ने एक नया चार्ट प्रस्तुत किया, ताकि उन 2 चार्टों का स्थान ले सके जो हबकूक अध्याय 2 की इस आज्ञा दर्शन को लिख और उसे पट्टिकाओं पर स्पष्ट कर की पूर्ति थे। 1327 के चार्ट ने भविष्यवाणी के चित्रण से 7 समय को हटा दिया, जबकि 2360, 2390 और 3335 के साथ ये 2 पवित्र चार्टों पर विद्यमान था। हबकूक में आज्ञा ये बताती है कि पट्टिकाएं बहुवचन ऐसे ढंग से प्रकाशित की जाएंगी कि जो उसे पढ़े वो दौड़ सके। 1327 के चार्ट लक्ष्य से इतना भटका हुआ था कि उसे समझाने के लिए साथ में एक व्याख्यात्मक पर्चे की आवश्यकता पड़ती थी। अतिरिक्त पर्चे के बिना 1327 के चार्ट को देखकर दौड़ना संभव नहीं था।
और प्रभु ने मुझे उत्तर दिया और कहा, दर्शन लिख और उसे पट्टिकाओं पर स्पष्ट लिख, ताकि जो उसे पढ़े वो दौड़ सके। हबक्कूक 2:2।
1863 का चार्ट एक नकली था, जिसे सच्चे को छिपाने के लिए बनाया गया था, ठीक वैसे ही जैसा विलियम मिलर ने अपने स्वप्न में देखा था। वे 2 पवित्र चार्ट उस वाचा के प्रतीक थे जो मसीह ने उन लोगों के साथ की थी, जिन्होंने अभी अभी पृथ्वी के पशु के सच्चे प्रोटेस्टेंट सिंह के रूप में अपनी स्थिति ग्रहण की थी। वे दोनों चार्ट मिलरवादियों और मसीह के बीच वाचा संबंध के प्रतीक थे, जो 1844 में अचानक अपने मंदिर में आए, और जब वे आए तो वाचा के दूत के रूप में आए। प्राचीन इज़राइल आधुनिक इज़राइल का दुप्रति रूप है, और जब मसीह ने प्राचीन इज़राइल को मिस्र की दास्ता से बाहर निकाला तो वो उस समय का प्रतिरूप था जब वे आधुनिक इज़राइल को पोप के शासन के 1260 वर्षों की दास्ता से बाहर निकालने वाले थे। बहन व्हाइट इन दोनों इतिहासों को बार बार समांतर इतिहासों के रूप में प्रतिपादित करती हैं।
हम पर बीते युगों का संचित प्रकाश चमक रहा है। इज़राइल के विस्मरण का वृत्तांत हमारे प्रबोधन के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस युग में परमेश्वर ने हर जाति, कुल और भाषा में से अपने लिए एक प्रजा को एकत्र करने हेतु अपना हाथ बढ़ाया है। आगमन आंदोलन में उसने अपनी निज संपत्ति के लिए कार्य किया है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इसराइलियों को मिस्र से निकालकर ले जाते समय उनके लिए किया था। 1894 की महान निराशा में उसकी प्रजा के विश्वास की परीक्षा उसी प्रकार हुई जैसे लाल समुद्र के किनारे इब्रानिय के विश्वास की हुई थी। टेस्टिमोनीज खंड 8, 115, 147।
जब प्रभु ने प्राचीन इज़राइल के साथ वाचा बांधी तो उन्होंने वाचा संबंध का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो पट्टिकाएं दी। जब प्रभु ने आधुनिक इज़राइल के साथ वाचा बांधी तब भी उन्होंने वाचा संबंध का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो पट्टिकाएं दी। 10 आज्ञाओं की दो पट्टिकाएं हबक्कूक की दो पट्टिकाओं का प्रतीक है। लाल समुद्र पार करने के थोड़े ही समय बाद उन्हें वे दो पट्टिकाएं दी। इस घटना को बहन व्हाइट 1844 की महान निराशा के साथ संबद्ध करती हैं। 1844 के शीघ्र बाद भविष्यवाणी के इतिहास के संदर्भ में प्रभु ने दूसरी पट्टिका प्रस्तुत की। प्राचीन इज़राइल को परमेश्वर की व्यवस्था के भंडारी बनाया गया और आधुनिक इज़राइल को न केवल परमेश्वर की व्यवस्था बल्कि उन महान भविष्यवाणीगत सत्यों के भी भंडारी बनाया गया।
परमेश्वर ने आज के समय में अपनी कलीसिया को, जैसे उसने प्राचीन इज़राइल को बुलाया था, पृथ्वी पर एक ज्योति के रूप में खड़ा होने के लिए बुलाया है। सत्य के शक्तिशाली क्लेवर अर्थात पहले, दूसरे और तीसरे स्वर्गदूतों के संदेशों के द्वारा उसने उन्हें कलीसियाओं और संसार से अलग कर दिया है ताकि उन्हें अपने साथ पवित्र निकटता में ले आए। उसने उन्हें अपनी व्यवस्था के संरक्षक बना दिया है और इस समय की भविष्यवाणी के महान सत्यों को उनके सुपुर्द कर दिया है। जैसे पवित्र वचन प्राचीन इज़राइल को सौंपे गए थे, वैसे ही ये संसार तक पहुंचाने के लिए एक पवित्र न्यास हैं। टेस्टिमोनीज खंड 5:54-500।
पहली दो आज्ञाएं मूर्ति पूजा के प्रति परमेश्वर की घृणा को दर्शाती है और उन्हीं पहली दो आज्ञाओं में वो ये बताता है कि दंड तीसरी और चौथी पीढ़ी तक दिया जाता है, क्योंकि वो ये बताता है कि वो एक ईर्ष्यालु परमेश्वर है।
उस समय व्यवस्था केवल इब्रानियों के हित के लिए ही नहीं सुनाई गई थी। परमेश्वर ने उन्हें अपनी व्यवस्था के संरक्षक और रखवाले बनाकर उनका सम्मान किया, परंतु उसे समस्त संसार के लिए एक पवित्र अमानत के रूप में रखा जाना था। 10 आज्ञाओं के उपदेश समस्त मानव जाति के अनुकूल हैं और वे समस्त मनुष्यों के मार्गदर्शन और अनुशासन के लिए दिए गए थे। 10 उपदेश संक्षिप्त, व्यापक और अधिकारपूर्ण, मनुष्य के परमेश्वर के प्रति और अपने सह मनुष्यों के प्रति कर्तव्यों को समेटते हैं और ये सब प्रेम के महान मूलभूत सिद्धांत पर आधारित हैं। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपनी सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे मन से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। लूका 10:27। ये भी देखिए व्यवस्था विवरण 6:5, लव्य व्यवस्था 19:18। 10 आज्ञाओं में इन सिद्धांतों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है और उन्हें मनुष्य की स्थिति और परिस्थितियों पर लागू किया गया है।
तू मेरे सम्मुख किसी अन्य देवता को न मानना। यहोवा अनादि, स्वयंभू, अजन्मा, जो सबका स्रोत और पालन करता है, केवल उसी को परम श्रद्धा और उपासना का अधिकार है। मनुष्य के लिए ये वर्जित है कि वो अपने प्रेम या सेवा में किसी अन्य को प्रथम स्थान दे। हम जो कुछ प्रिय मानते हैं, यदि वो परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम घटाए या उसके प्रति हमारी दया सेवा में बाधा डाले, तो हम उसी को अपना देवता बना लेते हैं। तू अपने लिए कोई गढ़ी हुई प्रतिमा या किसी भी वस्तु का कोई रूप, जो ऊपर आकाश में है या जो नीचे पृथ्वी पर है या जो पृथ्वी के नीचे जल में है, न बनाना। तू उनके आगे न झुकना और न उनकी सेवा करना। दूसरी आज्ञा ये निषिद्ध करती है कि सच्चे परमेश्वर की आराधना मूर्तियों या प्रतिरूपों के द्वारा की जाए। अनेक मूर्ति पूजक राष्ट्र दावा करते थे कि उनकी मूर्तियां मात्र आकृतियां या प्रतीक हैं जिनके द्वारा परमेश्वर की आराधना की जाती थी, परंतु परमेश्वर ने ऐसी आराधना को पाप ठहराया है। अनंत परमेश्वर को भौतिक वस्तुओं द्वारा निरूपित करने का प्रयत्न मनुष्य की परमेश्वर के विषय में धारणा को घटा देगा। यहोवा की अनंत परिपूर्णता से हटकर मन सृष्टिकर्ता की अपेक्षा सृष्ट प्राणी की ओर आकर्षित हो जाएगा, और जैसे उसकी परमेश्वर के विषय में धारणाएं नीचे गिरेंगी, वैसे ही मनुष्य स्वयं भी अधःपतित हो जाएगा।
मैं तेरा परमेश्वर यहोवा ईर्ष्यालु परमेश्वर हूँ। परमेश्वर का अपने लोगों के साथ घनिष्ठ और पवित्र संबंध विवाह की उपमा में दर्शाया गया है। क्योंकि मूर्ति पूजा आध्यात्मिक व्यभिचार है, इसलिए उसके विरुद्ध परमेश्वर की अप्रसन्नता को उचित ही ईर्ष्या कहा गया है। पितृपुरुष और भविष्यद्वक्ता
3 बरात 307।
परमेश्वर की ईर्ष्या विशेष रूप से मूर्ति पूजा के विरुद्ध प्रकट होती है, और ये कोई संयोग नहीं है कि यहेज़केलों के 8वें अध्याय में पहली घृणास्पद वस्तु ईर्ष्या की प्रतिमा है।
और ऐसा हुआ कि 6ठे वर्ष में, 6ठे महीने में, महीने के 5वें दिन, जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के प्राचीन मेरे सामने बैठे थे, तब वहां प्रभु यहोवा का हाथ मुझ पर पड़ा। तब मैंने देखा, और क्या देखता हूँ, आग के रूप रंग के समान एक आकृति, उसकी कटी से नीचे तक आग और उसकी कटी से ऊपर तक दीप्ति के समान अंबर के रंग जैसी, और उसने हाथ की सी आकृति बढ़ाई और मेरे सिर के बालों की एक लट से मुझे पकड़ लिया, और खात्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच उठा लिया, और परमेश्वर के दर्शन में मुझे यरूशलेम ले आया, उस भीतरी फाटक के प्रवेश द्वार पर जो उत्तर की ओर मुख किए हुए है, जहां ईर्ष्या को भड़काने वाली प्रतिमा का आसन था। और देखो, वहां इज़राइल के परमेश्वर की महिमा थी, जैसा दर्शन मैंने मैदान में देखा था। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के पुत्र, अब अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। सो मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाई, और देखो, उत्तर की ओर वेदी के फाटक के प्रवेश पर वही ईर्ष्या की प्रतिमा थी। यहेज़केल 8:25।
ईर्ष्या की मूर्ति उन चार क्रमशः बढ़ती घुनित बातों में पहली है जो यहेज़केल को दिखाई गई। ईर्ष्या की मूर्ति एडवेंटिज्म में बढ़ती हुई बगावत की 4 पीढ़ियों में से पहली की शुरुआत का प्रतीक है। पहली पीढ़ी 1815 में शुरू हुई। हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
प्राचीन भविष्यद् वक्ताओं में से प्रत्येक ने अपने समय की अपेक्षा हमारे लिए अधिक कहा, ताकि उनकी भविष्यद्वाणियां हमारे लिए प्रभावी हों। ये सब बातें उन पर दृष्टांत के लिए घटी, और वे हमारी चेतावनी के लिए लिखी गईं, जिन पर जगत के अंतिम युग आ पहुंचे हैं। 1 कुरिन्थियों 10:11। वे अपनी नहीं, परंतु हमारी सेवा में इन बातों को प्रकट करते थे, जिनका अब तुम्हें उन लोगों के द्वारा समाचार दिया गया है, जिन्होंने स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों पर स्वर्गदूत भी दृष्टि लगाने की लालसा रखते हैं। 1 पतरस 1:12। बाइबल ने इस अंतिम पीढ़ी के लिए अपने खजानों को संचित किया है और उन्हें एक साथ बांध रखा है। पुराने नियम की इतिहास की सभी महान घटनाएं और गंभीर व्यवहार इस अंतिम समय में कलीसिया में दोहराए गए हैं और दोहराए जा रहे हैं। सेलेक्टेड मैसेजेस बुक 3 3:38-339।